ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद अध्याय 30 श्लोक 31 से पढ़ रहा है। एकापपद्यते द्वंतम् हित्वेदं स्वकलेवरम् कुशलेतरपत्येयम् भूताद्रोहेण यद्वृतम्। अनुवाद और तत्पर्य शिला ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की अनुवाद। इस शरीर को त्याग कर वह अकेला नरक के अंधतम भागों में जाता है और अन्य जीवों के साथ ईर्ष्या करके उसने जो धान कमाया था वही पतेया के रूप में उसके साथ जाता है। तत्पर्य, जब मनुष्य अनुचित साधनों से धान कमाकर उस धान से अपने परिवार का तथा अपना पालन करता है तो वो दान यद्यपि परिवार के कई सदस्य द्वारा भोगा जाता है किंतु नरक तो उसे अकेले ही जाना होता है। जो व्यक्ति दान कमाकर या दूसरे की स्पर्धा करके जीवन का आनंद उठाता है और जो अपने परिवार तथा मित्रों के साथ आनंद उठाता है उसे अकेले ही ऐसे हिंसक तथा अवैध जीवन के पाप कर्म का पाल भोगना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि कोई मनुष्य किसी को मारकर कुछ दान प्राप्त करता है और उस दान से अपने परिवार का पोषण करता है तो जो इस कमाए हुए काले दान का भोग करता है वे भी अंशतः उत्तरदायी है, उन्हें भी नरक भेजा जाता है किंतु जो प्रमुख होता है उसे विशेष रूप से दंडित किया जाता है। भौतिक भोग का फल यह है कि पाप फल ही उसके हाथ लगता है, दान नहीं। उसके द्वारा कमाया दान इसी संसार में रह जाता है और वो अपने साथ केवल कर्म फल ले जाता है। इस संसार में भी यदि कोई मनुष्य किसी व्यक्ति की हत्या करके कुछ दान प्राप्त करता है तो उसके परिवार को फांसा नहीं दी जाती है, यद्यपि उसके सदस्य पाप से दूषित रहता है किंतु जो व्यक्ति हत्या करता है और परिवार का पोषण करता है तो उसे ही हत्यारे के रूप में फांसी दी जाती है। प्रत्यक्ष अपराध करता अप्रत्यक्ष भोक्ता की अपेक्षा पाप कर्म के लिए अधिक उत्तरदायी है। अतः परम विद्वान चाणक्य पंडित कहता है कि मनुष्य के पास जो कुछ भी है उसे सात कार्य में यह भगवान के लिए व्यय कर देना चाहिए, क्योंकि कोई अपने साथ दान दौलत नहीं ले जाता। दान दौलत जहां राह आती है और नष्ट हो जाती है, अतः या तो हम दान को त्यागे अन्यथा दान हमें त्यागेगा, किंतु हम दोनों विलाग होकर रहेंगे। जब तक दान हमारे पास है तब तक उसका सर्वोत्तम उपयोग जाहिर है कि कृष्ण भवनामृत प्राप्त करने में इसका व्यय किया जाए। सो इस अध्याय में भगवान कपिल देव अपनी माता विभूति को विपरीत कर्मों का वर्णन करता है और तो यहां पर इस श्लोक तो बताता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा। बोर वास्तव में तो इस भौतिक जगत में तो शुद्ध वैष्णव तो मालूम है कि क्या होगा मृत्यु के समय, इसके बाद कहां पर जाएंगे। शुद्ध वैष्णव भगवान के पास तो जाएंगे, तो इस जीवन में तो भगवान की सेवा में है तो भगवान के साथ ही है। शरीर छोड़ने के बाद भी कहां पर भी जाएंगे तो सेवा करेंगे। लेकिन जो दूसरे जो है जो भगवान को नहीं मानता है या अल्प मात्र से मानता है, उनको नहीं मालूम है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कहां पर जाएंगे। इसलिए जो जो नास्तिक लोग जो है विशेष करके उनके उनके पास बहुत भय है कि क्या होगा मृत्यु के बाद। विशेष करके पश्चात देश में तो इंद्र तृप्ति में लीन है, और अगर इसके बारे में तो बात करता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको नहीं मालूम है कि क्या होगा, क्या कहां पर जाएंगे। इसलिए तो इसके बारे में सुना उनको अच्छा नहीं लगता है। और तो हिंदुस्तान में भी भारतवर्ष में भी तो आजकल तो ज्यादा लोगों को नहीं मालूम है कि क्या होगा। तो इसलिए इस भागवतम में सिर्फ यहां पर नहीं है लेकिन दूसरे स्कंद में भी विशेष करके पंचम स्कंद में अच्छी तरह से लिखा है कि क्या होगा मृत्यु के बाद। अगर विपरीत कार्य में पाप कार्य में लीन है तो सबसे पहले हमको तो मालूम होना चाहिए कि क्या करना है इस भौतिक जगत में रहते हुए। तो जब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है, यह क्योंकि कर्तव्य है कि उनको तो देखना है, उनको सीखना है कि हम यहां पर क्यों आया है और क्या करना है और परम गति क्या है, यह सब सीखना चाहिए। और कैसे उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, भक्ति मार्ग में कैसे प्रवेश कर सकता है। इसलिए भगवान स्वयं भगवान भी यहां पर आ जाता है। यदा यदा ही धर्मस्या ग्लानीय भवति भारत अभ्युत्तम दर्शन तदात्मनम सृजाम्य हम परित्रणाय साधनम विनाश च दुष्कृतम धर्म संस्थापनातया संभवामी योगे योगे। हा युग में आ जाता है स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी। ब्रह्म जी के हर दिन में एक बार आता है, और उनके दिन तो बहुत लंबा है, सहस्र युग पर्यंतम। हमारे जो कलयुग जो है जो 432,000 वर्ष लंबा है, इसके बाद दो गुण द्वापर युग है और तीन गुण त्रेत युग और चार गुण सत्य युग। और ये चार युग इसका नाम है दिव्य युग, और सहस्र 1,000 दिव्य युग ब्रह्म जी के एक दिन है, और वैसे ही उनकी रात इतना लंबा है। तो ब्रह्म जी के एक दिन में कृष्णा स्वयं भगवान जो मूल रूप है सबके उद्गम है एक बार आता है, और दूसरे समय तो उनके विस्तार रूप आ जाता है। जिससे तो अलग अलग युग है, जैसे कलयुग में भी श्री चैतन्य महाप्रभु कलयुग के अवतार है, चन्न अवतार है, क्योंकि भक्त के रूप में आया है, और कलयुग के शुरुआत में आया है। और शुरुआत ये और कलयुग के अंत के समय कल के अवतार आएंगे। तो हर युग भगवान के अवतार होता है। तो द्वापर युग भी आ जाता है, और कृष्णा स्वयं भगवान आए थे, और इससे पहले रामचंद्र भी और दूसरे विष्णुमूर्ति भगवान के विस्तार रूप अवतरित हुए थे। और ये धर्म स्थापित करने के लिए उपदेश करने के लिए जैसे कपिल मुनि भगवान के विस्तार रूप है, भगवान के अवतार है। तो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दिया है अपना मत को। और तो सबसे पहले पहले बात जो है कि हमको मालूम होना चाहिए यह है कि हम तो शरीर नहीं है अपितु आत्मा है, और हमारे संबंध है परम आत्मा के साथ, भगवान के साथ। भगवान के साथ हमारे संबंध है, ये असली संबंध है। जैसे आध्यात्मिक जगत में गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ लोक में, तो ये संबंध, इसका नाम है स्थाई भाव, ये हमेशा के लिए है, नित्य संबंध है। तो वैकुंठ लोक में भगवान वहां पर स्वामी है, स्वामी के रूप में है, और सब उनके जो परिकार जो है ये सेवा भाव में है, दस्य भाव में है। ये स्वामी है और हम उनके दास है, दस्य भाव है, और ऐश्वर्य पूर्ण उनके भाव है, प्रेम है, ज्ञान है। लेकिन सबसे उच्च जगह है, सर्वोत्तम जगह है ये ब्रज धाम, और ये भी विभाजित है चार भाग में। एक तो है गोलोक वृंदावन, जो सर्वोत्तम जगह है, वहां पर भी ब्रज धाम है, सर्वोत्तम जगह है वृंदावन गोलोक धाम। और इसके बाद है द्वारका, मथुर धाम है, और द्वारका धाम है, वहां पर द्वारकाधीश रहता है और मथुरेश। और इसके बाद चौथे भाग में जो है ब्रज धाम में, आध्यात्मिक जगत में, ये श्वेत द्वीप नवद्वीप है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण के अभिन्न स्वरूप है, उनके वास स्थान है ये नवद्वीप। तो गोलोक वृंदावन से अभिन्न है, अभिन्न भी है और अभिन्न है, चिंत भेद भेद तत्व। तो वहां पर के संबंध जो होता है, जैसे तो सर्वोत्तम जगह पे ब्रज में, वहां पर जो संबंध जो होता है ये है तो प्रेम से होता है। जैसे वहां पर संत भाव भी है, एक दृष्टि से संत भाव है, जैसे ये बछड़े है, गाया है, और अलग अलग पशु पक्षी है, तो एक दृष्टि से संत भाव में है, लेकिन उनके पास तो प्रेम है कृष्ण के प्रति, तो दस्य प्रेम हो। जैसे और गाय भी जो दूध देता है कृष्ण के लिए भी, उनके पास भी वत्सल्य भाव है। और तो दस्य भाव है जो सेवक जो है, लेकिन प्रेम से सेवा करता है, और कृष्ण भी नहीं सोचता है कि हम स्वामी है, ये मेरे दास है। ये बहुत प्रेम से ये संबंध रहता है वहां पर। कोई ऐश्वर्य नहीं है, मधुर्य भाव है, और शाखा भी जो है उनके भाव जो है, कृष्ण मेरे घनिष्ठ मित्र है, और ये नहीं मानता है कि कृष्ण भगवान है, उनका नहीं मालूम है। तो योग माया के प्रभाव से, और वत्सल्य भाव जो है, नंद बाबा यशोदा माई सोचते हैं ये मेरे लाला है। तो ये स्थाई भाव है, ये नित्य भाव है, प्रेम के भाव है, प्रेम संबंध है। और सर्वश्रेष्ठ भाव जो है ये गोपियां और कृष्ण के संबंध में जो है, गोपी भाव जो है, मधुर्य भाव जो है, आदि भाव है। तो ये पहले ज्ञान है कि हमको मालूम होना चाहिए कि वास्तविक संबंध जीवात्मा भगवान के साथ है, गोलोक वृंदावन में या वैकुंठ लोक में। इस तो जैसे परमात्मा भी है, लेकिन वास्तविक उनके साथ तो संबंध नहीं है। सिर्फ जब जीवात्मा इस भौतिक जगत में है, उसी समय परमात्मा के साथ है, उनके दिल में है, लेकिन सिर्फ जब ये जीवात्मा इस भौतिक जगत में, सिर्फ उसी समय परमात्मा है उनके साथ। मुक्त वास्तव में कोई परमात्मा नहीं है, परमात्मा की कोई जगह नहीं आध्यात्मिक जगत में। परमात्मा महाशंकर शाम के विस्तार रूप है, जो एक जो जैसे ये चतुर्व्यूह है, पहले प्रथम चतुर्व्यूह है द्वारका में है, वासुदेव शंकर शान प्रदुम्न अनिरुद्धा। तो ये शंकर शान ये बलराम है, उनका दूसरा नाम भी है मूल शंकर शान। तो उस मूल शंकर शांत से ये द्वितीय चतुर्व्यूह प्रकट हो जाता है जो वैकुंठ धाम में स्थित है। विष्णु मूर्ति है, उनका नाम फिर से भी है वसुदेव शंकर शांत प्रद्युम्न युरुधा। और इस द्वितीय शंकर शांत से उनका दूसरा नाम है मांग शंकर शांत। उनसे ये महाविष्णु, उनका दूसरा नाम है करंद दक्ष विष्णु प्रकट हो जाता है और उनके शरीर से कोटि कोटि अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है और हर ब्रह्मांड में एक दूसरे उनके विस्तार रूप महाविष्णु के गर्भ दक्ष विष्णु प्रवेश करता है। और इसके बाद सर्वव्यापी विष्णु क्षीर दक्ष विष्णु परमात्मा के रूप में है, सबके दिल में है, विराजमान है। जीवात्मा के साथ जब भौतिक जगत में है उनके साथ रहता है, लेकिन ये नित्य संबंध नहीं है। तो ये पहले ज्ञान ये है, ये संबंध ज्ञान है। तो इस संबंध के ज्ञान के साथ तो सीखना चाहिए कि क्या करना है क्या ना करना है। इसलिए यहां पर भी बताता है कि जो विपरीत कार्य है कि हम इससे दूर तो रहना चाहिए, अन्यथा क्या होगा इसमें बताएगा या है। और ये तो जो बद्ध जीव जो है तो उनको नहीं मालूम है, लेकिन इसलिए जो भक्ता है तो उनको प्रचार करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है लेकिन भक्त के रूप माया है और खुद उन्होंने खूब प्रचार किया थे और भक्त लोग को बताता है यरे देखा ताय का कृष्ण उपदेश हमारा आज्ञाया गुरु हना तरा ए देश। तो दूसरे के साथ तो मिलता रहता है तो उनको थोड़ा सा उपदेश देना है जब देखता है कि ये भक्ति लाइन में नहीं है, भक्ति मार्ग में नहीं ही है। तो सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले हमको अच्छे तरह से साधन भजन करना है, आचार पहले आचार अच्छे तरह से साधन भजन करना है, इसके बाद प्रचार होता है। तो लेकिन कोई भक्त है जो आचार करते हैं अच्छे तरह से लेकिन प्रचार नहीं करता है, ये अच्छा है ठीक है। और कोई दूसरा है जो अच्छे तरह से प्रचार करते हैं लेकिन उनका आचरण अच्छा नहीं है, ये भी ठीक है। कम से कम प्रचार करते हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ है यह जो अच्छे तरह से आचरण करते हैं, आचार उनके अच्छा है और प्रचार भी करता है। तो इस अंदलिन ये तो इसके लिए तो है। प्रभुपाद ने बहुत बार बताते थे कि ये आंदोलन ब्राह्मण लोग के लिए है, ब्राह्मण के लिए है। वैष्णव तो जब वैष्णव पाद पे आ जाता है तो वैष्णव सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण भी है, सर्वभक्त भी हो, लेकिन ब्राह्मण के अवस्था पे जरूर होंगे। क्योंकि भगवान जो परम तत्व है, पर ब्राह्मण है, उनकी पूजा करता है और उनकी पूजा करने के लिए तो सत्वगुण में रहना चाहिए। सर्वभक्त भी अगर एक दृष्टि से तो जैसे मंदिर की सफाई करता है और ऐसा कोई काम करता है, लेकिन अगर भगवान किसे भगवान का जप करता है और भगवान सब कुछ भगवान को अर्पण करता है तो वैष्णव बन जाता है, तो वैष्णव ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण से भी ऊपर है वास्तव में। तो मेरे कर्तव्य है कि दूसरे को बताना है कि हमको भगवान की सेवा करना है क्योंकि हम भगवान के नित्य दास है। और तो और आजकल जब शहर में जाता है तो सबको हम देखता है कि सब इंद्र तृप्ति में लीन है, तो सबको बताना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए, थोड़ा सा बताना है कि इसके बारे में कि सत्कर्म करना है। इस तत्पाणी में भी बताता है सत्कर्म करना है, असत कार्य छोड़ना है। तमसी मा ज्योतिर्गमयः, ये तमगुण अंधकार हमको छोड़ना है। अंधकार क्या है? जब हमको नहीं मालूम है कि भगवान है और मालूम भी होता है लेकिन उनके लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो ये अंधकार है, तमगुण है या राजगुण में है। लेकिन जो सात्विक है लोग, जो सत्गुण में है, उनको मालूम है कि भगवान है और हम भगवान की सेवा करना चाहिए। अगर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा नहीं कर सकता है तो कम से कम अल्प मात्र से सुबह और शाम को थोड़ा सा सेवा करना चाहिए ठाकुर जी के। लेकिन अंत में पूर्ण रूप से भगवान की सेवा करना चाहिए आध्यात्मिक अवस्था पे पहुंचने के लिए। तो ये तो जरूरत है। तो विपरीत कार्या तो इस आजकल कलयुग में तो ज्यादा लोग इसमें तो लीन है, विशेष करके पाश्चात्य देश में मांसाहार हिंदुस्तान में भी होता है। ये सबसे बड़ा पाप ये है, जैसे यहां पर बताता है। तो इससे तो बचना चाहिए, दूसरों को बताना है कि मांस खाना तो छोड़ना ही है। और इसके बाद अलग अलग दूसरे पाप कार्य ये तो छोड़ना है। लेकिन कैसे छोड़ सकता है? यह कि अगर भगवान की सेवा में लीन है तो ये दूसरे कार्य छोड़ सकता, अन्यथा मुश्किल होता है। और जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, बहुत लोग चेष्टा कर रहे हैं इस भौतिक जगत में, हिंदुस्तान में भी, पश्चात देश में। बहुत लोगों को तो मालूम है कि शराब पीना, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए नहीं है, दिमाग के लिए नहीं है, अपने लिए अच्छा नहीं है, लेकिन नहीं छोड़ सकता है। तो छोड़ने के लिए ये तो क्योंकि एक प्रकार के रास है इस भौतिक जगत में, तो भौतिक रास है, इससे कुछ मिल सक तो मिलता तो रहता है, इसलिए तो करता है। सिगरेट में पीना कुछ रास मिलता है, लेकिन भौतिक रास और वास्तविक रास नहीं है। तो लेकिन ये इसको छोड़ने के लिए हमको आध्यात्मिक रास में लीन होना चाहिए। तो जैसे भगवान की जो संबंध जो होता है ये रास कहता है, मधुर्य रास, सख्य रास, वत्सल्य रास। लेकिन और कृष्णा रसिक शेखर है, तो और जो इसमें लीन है, जो अच्छे तरह से शुद्ध वैष्णव जो अच्छे तरह से शरण भजन करता है, उसका नाम है रसिक वैष्णव, रसिक वैष्णव। लेकिन तो उसी अवस्था पर पहुंचने तो समय तो लगता है। पहले साधन भजन करना है, जब अच्छे तरह से साधन भजन करता है तो भावावस्था में पहुंच सकता है, और उसका नाम जो है भवुक वैष्णव। तो जब कृष्ण की सेवा करता है, साधन भजन भी अगर आगे भी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ रस मिलता है, आनंद मिलता है। और जब ये आध्यात्मिक आनंद मिलता है तो भौतिक रस ये छोड़ सकता है, अन्यथा संभव नहीं है। ये सिर्फ कुछ समय के लिए, लेकिन फिर भी कोई है जो सत्व गुण में है ये पाप कार्य भी छोड़ सकता है, ये भी संभव है जब सत्व गुण में है। लेकिन फिर भी नीचे गिरने की संभावना है जब भगवान की संबंध नहीं है। और जब भगवान की संबंध में भी रहते हुए भी गिरने की संभावना है, इसलिए हमेशा अच्छे तरह से जप करना है और भगवत का श्रवण रोज रोज करना चाहिए, ठाकुर जी की सेवा रोज रोज करना चाहिए, साधु के संग में रहना चाहिए और साधु की कृपा से उनके मुखरविंद के वाणी जब इसका श्रवण करता है और इस श्रवण के फलस्वरूप जब उनके और जब उनकी सेवा में अगर उनकी सेवा करता है किसी प्रकार से जब उनके आशीर्वाद मिलता है तो इस आशीर्वाद के साथ हम आगे जा सकता है आध्यात्मिक मार्ग में। और जब आध्यात्मिक शक्ति है तो भौतिक अशक्ति छोड़ सकता है, अन्य तो संभव नहीं है। तमसी मा ज्योतिर्गमयः असत मा सद्गमयः। और क्या है तीसरा जो? हाँ क्या? मृत्यु मा अमृत गमयः। मृत जीवन ये तो है जब भगवान की सेवा न करता है, और अमृत गमयः तो अमृत तो ये भी एक प्रकार के रास है, जैसे चरणामृत हम पीता है, जब चरणामृत पीता है तो फिर से जन्म लेना जरूरत नहीं है। ये चरणामृत ये भगवान के जब रोज रोज उनके अभिषेक होता है, उनके ये अभिषेक के पानी है, इसमें भी थोड़ा सा दूध है, जब उनके दूध से अभिषेक करता है और ये मधुपान के अर्पण करता है तो जब ये पीता है तो फिर से जन्म लेना जरूरत नहीं है। तो अमृत रसमृत है ये भक्ति मार्ग, जब इसमें लीन है तो फिर से जन्म लेना जरूरत नहीं है। तो अमृत यह है, अमार हो जाता है जब भगवान की सेवा में लीन है। तो दूसरे कोई उपाय नहीं है। और ये भी है कि तो भक्त के रूप में जब है साधक जो है तो चेष्टा कर रहा है आगे जाने के लिए, लेकिन माया का प्रभाव तो है, तो इससे तो बचना तो चाहिए। तो इसके लिए तो रोज रोज भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव के पास जाना है, उनकी कृपा से तो आगे जा सकता है। जिससे हम भी देखता है कि गौरलीला में और श्रीमद् भागवतम के भी वर्णन किया है, जैसे भरत महाराज ये भाव भक्त थे, भाव अवस्थ में थे, उच्च अवस्थ में थे, लेकिन फिर भी छोटी सी त्रुटि के फल स्वरूप से गिर गए भाव अवस्थ से, और मृग के शरीर तो मिला था, क्योंकि उनकी शक्ति शक्ति जब उन्होंने देखा एक बार एक हिरण तो ये एक शेर के भाई से नदी में गिर गए प्रवेश किए, और उसी समय भी शरीयत छोड़ दिया, और उनके बच्चे को देखकर ये भरत महाराज तो वैष्णव दयालु है, उन्होंने सोचा हमको उसको वहां से निकालना है, और इसके बाद उसका पालन पोषण किए थे, और इसके बाद तो अपना भजन थोड़ा सा क्योंकि ये बच्चे उनके पास आते थे, और इसके फलस्वरूप तो उनके नियमित जो ठाकुर जी की सेवा थोड़ा सा गीला हो गया था, और इसके फलस्वरूप अंत के समय ये बच्चे का स्मरण किए थे, और इसके बाद ऐसा शरीर मिले थे, लेकिन ये दुर्लभ है, लेकिन फिर भी उदाहरण गया है दिया है जिससे हम हमेशा सावधानी से रह सकता है, और क्योंकि माया के प्रभाव तो बहुत ज्यादा है, विशेष करके कलयुग में। और जैसे गौरलीला में भी जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत गए थे उसी समय उनके एक सेवक उनके साथ थे, और एक जगह पे कोई दूसरे लोग बतारी ये उनके जो उनके साथ भी स्त्री रखते थे, और उनके महाप्रभु के सेवक उस स्त्री के माध्यम से खींच लिए थे, और तो महाप्रभु की सेवा उन्होंने छोड़ दी है उनकी सेवा, तो महाप्रभु के संग में भी रहते हुए संभावना है गिरने के लिए, लेकिन महाप्रभु तो दयालु है और उनको फिर से वहां से लेकर आए थे, और लेकिन बाद में जब पुरी में पहुंच गए फिर से, संतों के परिकार को बोले थे महाप्रभु ने कि ये अच्छा सेवक नहीं है तो मेरी सेवा भी नहीं कर सकता है। लेकिन महाप्रभु के जो नित्य सिद्ध परिकार बहुत दयालु थे और दूसरे सेवा में उनको लगाते थे, तो सवारानी से हमको भजन करना चाहिए। विनम्र भाव में रहते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए हमको आगे जाना चाहिए। तो ऐसे करते हुए तो उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है और अंत में भगवान की लीला में प्रवेश कर सकता है। हरे कृष्णा। अच्छा, कोई प्रश्न है? सब स्पष्ट है? ठीक है। विशेष करके कलयुग में तो हरि नाम के द्वारा हमको उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है। माधुरम मधुरे व्योपि मंगले व्योपि मंगलम पावनम पावने व्योपि हरे नाम एव केवलम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। सो हरि नाम सबसे मधुर चीज है। जैसे रसगुल्ला है, ये तो बहुत मीठा तो है और बहुत मधुर तो है, लेकिन किन्ने रसगुल्ला खा सकता है? दो चार और तो। लेकिन हरि नाम हमेशा ले सकता है। पावनम पावने भी तो बहुत सारे कार्य है जिससे हम शुद्ध हो जाता है, लेकिन सबसे सर्वश्रेष्ठ है हरि नाम। और मंगल कार्य भी है, लेकिन सबसे मंगलमय कार्य है ये हरि नाम। तो हरि नाम के द्वारा उत्तम अवस्था पर पहुंच सकता है, अपना और भगवान का स्वरूप का अनुभव कर सकता है। और ठीक है, तो अच्छा तरह से भजन करना है। श्री प्रभुपाद की, श्री गोनिताय की, श्री कृष्ण बलराम की, श्री राधा श्याम सुंदर की, हरे कृष्णा। और आप सब यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत मधुर महाप्रसाद मिल सकता है। हरे कृष्णा।